أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: يا ابن جندب حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه فيكون محاسب نفسه، فإن رأى حسنة استداد منها وإن رأى سيئة استغفر منها. درود بجي محمد وعلى محمد. جس ہفتے کے اندر اس وقت ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بعض علماء اسے ہفتے ولایت کے نام سے تعبیر استعمال کرتے ہیں. یہ وہ ہفتہ ہے کہ جس کے اندر جو عید الاضحیٰ اور عید غدیر کے درمیان یہ ہفتہ جو واقع ہوا ہے، اس کی بہت زیادہ تاریخی اہمیت اپنی جگہ پر رکھتی ہے کہ جس کے اندر مجھے اور آپ کو، خاص طور پر جو عید غدیر ہے کہ جس کو عید اللہ الاکبر کہا جاتا ہے روایات کے مطابق، مجھے اور آپ کو بہت زیادہ دقت کے ساتھ ان واقعات کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی. عزیزان گرامی، بعض اوقات ہم سے یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہم واقعات کو، تاریخ میں گزرے ہوئے اہم ترین واقعات کو بعض اوقات کوموریٹ کرتے ہیں یا سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس پر آنسو بہاتے ہیں یا اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. بعض اوقات ہماری گیدرنگز کے اندر ان مقامات کی مختلف انداز میں خوشی منائی جاتی ہے یا مختلف انداز پر اس سے افسوس و گریہ کیا جاتا ہے. یہ سب کا سب مقدمہ تھا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن بعض اوقات ہم ان مقصد کو بھول جاتے ہیں اور اسی مقدمے کے اندر اپنی تمام زندگی صرف کر لیتے ہیں، جو بعض اوقات جس کی وجہ سے ہم اس ایسنس کو، اس روح کو، اس اسپرٹ کو جس تک مجھے اور آپ کو پہنچنا تھا اس تک نہیں پہنچ پاتے. غدیر اسی قسم کی ایک حقیقت کا نام ہے. غدیر فقط 1400 سال پہلے ہوئے تاریخ کا گزرا ہوا واقعہ نہیں ہے کہ جس کے اندر شیعہ اور سنیوں کے درمیان ایک اختلاف کا باعث بنا اور ہم اور آپ جدا ہو گئے. بس اس کے اوپر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آیا امام علی علیہ السلام بلا فضل خلیفہ تھا یا کوئی اور تھا، اور اسی بات پہ ہم اپنی زندگی گزار دیں. نہیں، فقط یہ نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ ضرور یقیناً اس کا ایک مزداق، اہم ترین مزداق یہ حقیقت ہے کہ جس پر ہم قائم و دائم ہیں، اور اکیڈمیکلی وی آر ریڈی ٹو پروف دیٹ، اور ہمارے پاس بہت اسٹرانگ ثبوت موجود ہے خود اہل سنت کی کتابوں سے. یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک اگلا سوال مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے کہ اس غدیر کی حقیقت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے، مجھے اور آپ کو کیا سمجھنا ہے غدیر کے واقعے سے، کس طریقے سے وہ عید الاضحیٰ کے جس میں خداوند عالم اس طرح سے تعبیر استعمال کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا، جب خداوند عالم نے امتحان لے لیا، اس کے بعد خدا کہتے ہیں انی جاعلک للناس امام، اے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. بس لوگ تمہیں امام نہیں بنا سکتے، لوگوں کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ اپنا سلیکٹ کر لیں امام کے جس کو چاہیں، جس کو اپنا لیڈر، جس کو اپنا رہبر بنانا چاہیں بنا سکتے. نہیں، یہ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. غدیر کے اندر میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول ان تک پہنچا دے وہ حکم جو میں خداوند عالم نے تجھے پہنچایا تھا، جو حکم تجھے دیا گیا تھا. آپ کا کام رسول ہے، آپ رسول اللہ ہیں، یو آر دا میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کا کام یہ ہے کہ اس پیام کو آگے منتقل کر دیں لوگوں تک. بس اصل حکم کہاں سے آ رہا تھا، وہ ولایت کہاں سے جنریٹ کی جا رہی تھی، وہ حکم، وہ امامت کا سورس کہاں پر تھا، وہ ذات پروردگار عالم کی ذات ہے کہ جہاں سے سورس آ رہا تھا. لہٰذا میرے مولا نے جب خوارج کی اس جملے کو سنا تھا، لا حکم الا للہ کا کلمۃ الحق، کلمہ حق ہے، بات صحیح ہے، युरा दो बेअलबाद, लेकिन जहाँ ये लोग इस्तेमाल करें वो गलत इस्तेमाल करें। बस कलमा हक की कुरान की आयत ला हुक्म इल्ला लिल्ला, इस ज़मीन पर फ़कत एक हस्ती का हुक्म नाफिज हो सकता है, वो खुदावंद आलम की ज़ात है। इसके अलावा ये तमाम लोग के जो खुदा के हुक्म के अगेंस्ट में खड़े, ये सब के सब तागूत है। और मुझे और आपसे कहा गया इजतनिबुत तागूत, तागूत से तुम्हें नफ़ी करनी है। अगर गदीर ये रूह ये स्पिरिट ये पयाम मुझे और आपको दे रही है तो वो हकीकी मानों में गदीर है। लेकिन अगर ये गदीर आपको मुझे वो पयाम नहीं दे रही, इसका मतलब ये और आप मैं और आप गदीर के नाम पर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये वाकई मानों में गदीर नहीं कि इसको मैं और आप सेलिब्रेट करें, ये तारीख में गुजरा हुआ एक वाकया है। और गदीर मुर्दा नहीं है, गदीर ज़िंदा है, विलायत अहल बैत अलैहिस्सलाम ज़िंदा विलायत है। लिहाजा मैं और आप उस हस्ती का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो फर्जंद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, और उसी गदीर की फिक्र का आयाह करने वाला है। मुझे और आपको अपने आप को आमादा करना है, मुझे और अपने आप को अपने बच्चों को इस निगाह के ज़रिए से इस निगाह के साथ परवान चढ़ाना है कि मैं और आप इस वक्त जुल्मत के अंदर डार्कनेस के अंदर खुदा के अगेंस्ट में तागूत के विलायत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मुझे और आपको अपने आप को फिक्री तौर पर मानवी तौर पर ज़ाहरी तौर पर इसके लिए आमादा करना है कि हमें किसी और हस्ती का मैं और आप इंतज़ार, हम अब तक किसी और हकीकी मानों में खुदा के निज़ाम की इस ज़मीन पर नाफिज होने का इंतज़ार करें, और ये गदीर की हकीकी रूह है। लिहाजा कोशिश करें कि गदीर को वाकई मानों में ईद के तौर पर बनाएं। मैं इस बात को ताकीद के साथ कह रहा हूँ, ख़ासतौर पर इस सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर मैं और आप रह रहे हैं, बाज़ हकीकी मानों में तशय्यो के इम्तियाजात हैं जिसको मैं और आप फरामोश कर जाते हैं या कम अज़ कम अपनी आइंदा नस्ल तक मुंतकिल नहीं कर पाते। जिस कदर अजीम तरीके से मैं और आप गदीर को मना सकते हैं, गदीर को मनाएं, सेलिब्रेट करें, बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि ये ईदुल्लाहिल अकबर है वाकई मानों में। अब जो कुछ अपने बच्चों के लिए मादी तौर पर नेमतों को प्रोवाइड कर सकते थे आम दिनों के अंदर, आम ईदों के अंदर, इससे कई गुना ज़्यादा गदीर के मौके पर इस बात को सेलिब्रेट करें। इस बात को 3 दिन तक मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऐलान के बाद जब रसूल ने कहा था मन कुंतु मौला फहादा अली मौला, 3 दिन तक खुद गदीर के मौके पर एक एक शख्स ने आके रसूल की इस वली के हाथों पर बैत की थी। और 3 दिन तक रसूल ने इस बात को याद दिलाया मुसलमानों को कि ये अहम तरीन वाकया है तुम्हारी ज़िंदगी। अगर तुमने इसको फरामोश कर दिया, इसका मतलब तुमने रसूल की रिसालत को फरामोश कर दिया था। लिहाजा मुझे और आपको इस हकीकत को हकीकी मानों में समझना होगा और फिर इसको इस तरह से सेलिब्रेट करना होगा कि ये फरामोश ना हो जाए, उम्मत इसको फरामोश ना कर दे, मैं और आप फरामोश ना कर दें, हमारी आइंदा नस्लें इसको फरामोश ना कर दें उसकी हकीकी स्पिरिट के साथ, फ़कत तारीख के एक वाक़े के साथ नहीं, बल्कि याद रखें कि फ़कत खुदा को हक है कि इस ज़मीन पर अपना हाकिम और सरबरा और लीडर को जो है वो नाफिज करे, किसी और को हक हासिल नहीं है। फ़कत निज़ाम इलाही है कि जो ज़मीन पर नाफिज होता है, क्योंकि इस ज़मीन को खुदा ने क्रिएट किया, इस ज़मीन पर तमाम नेमतें खुदा के ज़रिए से आई हैं। वलआक़िबत लिलमुत्तकीन, और जो खुदा का नेक बंदा होगा, कुतिब फ़िज़्ज़बूर, खुदावंद ने ज़बूर में इस बात को लिख दिया है, इन्नल अर्ज़ा यरिसुहा लिल्लाहि इबादिस्सालिहून, सालिहीन, खुदा के साले बंदे ही जो है ज़मीन के वारिस बनने वाले हैं। ये एक खुदा की तरफ से नाफिज किया हुआ कानून है कि जो होना है, लेकिन मुझे और आपको अपने आप को उसके लिए आमादा करना हो। लिहाजा गदीर को इस स्पिरिट के साथ, इस रूह के साथ बनाए। इसी मौजू से कनेक्टेड एक मौजू मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था, हदीस के चंद जुमले आपके सामने पेश करूंगा। मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस बहुत जामे और उलमा की ताकीद के मुताबिक, बाज़ उलमा अपने शागिर्दों को ये ताकीद करते हैं कि इस हदीस के खुद एक कॉन्टेंट को, यानी हदीस की इबारत को अपने मुसल्ले में रखो, और जब भी मौका मिले नमाज के बाद बेनवान ताकीब इस हदीस को पढ़ो। और ये हदीस कोई छोटी हदीस नहीं है, अगर आप नॉर्मल A4 साइज़ के अंदर इसको पेज पे प्रिंट करें, नॉर्मल प्रिंट साइज़ के अंदर एटलीस्ट 6 पेजेस की हदीस है कि जो इमाम जाफर अलैहिस्सलाम ने बेनवान वसीयत अपनी विल के तौर पर अब्दुल्लाह अपने जुंदब को बयान की और कहा कि मेरे शियों तक ये पैगाम पहुंचा देना, ये मेरी वसीयत है इन लोगों को, ये मेरी विल है इन लोगों को कि ये इस वसीयत पर अमल करें। यार लिहाजा शिया अली इब्ने अबी तालिब होने के अतबार से, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का से मंसूब होने के अतबार से, जाफरी कहना लेने के लायक बनने के अतबार से, ये मेरा आपका वजीफ़ा है कि मेरे मौला की विल को, मेरे मौला की वसीयत को मेरा आप मुताला करें। देखें कि इस फर्जंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार दुरूद भेजो।
Allah
हम सबको क्या नसीहत की है, क्या वसीयत की है। वो जुमला कि जो मैंने आपके सामने सरनामे कलाम में पेश किया, वो इस हदीस का एक टुकड़ा है कि जिसके अंदर मेरे मौलाना ने मुहासिबे के बारे में, सेल्फ इवेल्यूएशन के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में चंद नुकात को आपके सामने अर्ज़ किया। जब इन हदीस का या इस तरह की मुशाबे हदीस का मैं और आप मुताला करते हैं, तो बाज़ औक़ात मैं और आप अकाउंटेबिलिटी को, मैं और आप सेल्फ इवेल्यूएशन को फ़कत महदूद करते हैं अपनी ज़ात के साथ, अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के साथ कि मुझे अपने आप को इवेल्यूएट करना। डेफिनेटली ये अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ बड़े स्केल के ऊपर उम्मत इस्लामी को, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, अपनी जिम्मेदारियों को इवेल्यूएट करना है, अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप को अकाउंटेबल करना है खुदावंद आलम के हुक्म के सामने, कि वो हुक्म के जो गदीर में, वो ऐलान के जो रसूल ने गदीर के अंदर किया था, मैं और आप किस हद तक उसको एक्चुलाइज कर पाए सोसाइटी के अंदर, और कहाँ पे हमसे कोताही हुई है, कहाँ हम उसको बेहतर बना सकते हैं, कैसे इस विलायत उज़्मा को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं हम लोग। ये सारे सवाल थे कि जो मुझे और आपको करने हैं। मैं इस हदीस के इंडिविजुअल जंबे को या डायमेंशन को ज़्यादा फोकस करूंगा आज के अंदर, लेकिन मैं इस बात पर ताकीद कर रहा हूँ कि फ़कत इस तक महदूद नहीं रहिएगा। ये मुहासबा, ये अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, वहाँ एक उम्मत की एज ए यूनिट भी जो यही जिम्मेदारी मौजूद होती है कि हम अपने आप की जिम्मेदारियों को इवेल्यूएट करें कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, व्हाट वी डिड फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वाज गिवन टू अस बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिगार्डिंग द विलाया एंड द गदीर ऑफ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हदीस के अंदर मेरा मौला अब्दुल्ला इब्ने जुंदब को कुछ इब्तदाई नुकात बयान करने के बाद एक अहम तरीन नुक्ते की तरफ इशारा करता है। हदीस का वो जो इब्तदाई पोर्शन है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं खुलासा उसके सामने आपके सामने पेश करूँ तो इस तरह से कि मेरा मौला ये फरमाता है कि अगर तुम वाकई मानों में शिया अहलबैत अलैहिस्सलाम हो, तो फिर आमादा कर लो अपने आप को शैतान से मुकाबले के लिए, क्योंकि शैतान ने अपने तमाम हथियारों को, अपने तमाम टूल्स को, अपने तमाम दामों को, अपने तमाम कैच करने वाली टूल्स को जो है वो रखा हुआ है किसके लिए, ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम के शियों को जो है वो अपने ट्रैप के अंदर कैच कर सके। इसने प्लान इस तरह से किया हुआ है, बस अगर तुम वाकई मानो में अली इब्ने अबी तालिब के शिया हो, तो फिर बी रेडी फॉर द फाइट, अब तुम मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। अब जो है वो मुकाबला जो है वो वन बाय वन होने वाला है, अब शैतान आसानी से राजी होने वाला नहीं है तुमसे, क्योंकि तुमने हक को पहचान लिया है। वो लोग कि जिन्होंने हक को नहीं पहचाना तो वैसे ही हक के रास्ते से दूर हो चुके हैं, शैतान को उनसे कोई मुकाबला नहीं है, मगर वो लोग कि जो हक के रास्ते पर साबित कदम है, जिन्होंने सिराते मुस्तकीम को पहचान लिया, क्योंकि शैतान ने खुदा के सामने वादा किया था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कि मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठा हूँ, जो लोग सिराते मुस्तकीम पर है ही नहीं उनका तो शैतान से मुकाबला नहीं है, लेकिन वो लोग कि जिन्होंने सिराते मुस्तकीम को पहचान लिया, अब अहले बैत अलैहिस्सलाम ने आपको बताया कि आप बी रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन, अब मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, अब आस्तीनें चढ़ा लो, अब तुम्हारा मुकाबला होने वाला है। किसके साथ मुकाबला होने वाला है? शैतान के साथ मुकाबले वाला, जो खुदावंद आलम ये कहता है कि अदुव्वे मुबीन है, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, जिसने खुदा के सामने ये अहद किया था कि लाउगवियन्नहुम अजमईन, मैं सब के सब लोगों को गुमराह कर दूंगा। अब जब मुकाबला इतना सख्त है, जब दुश्मन इतना स्ट्रांग है, मैं और आप अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ ले जाते हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ए फरजंदाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप हमें गाइड करें कि हमें करना क्या है, हाउ वी कैन कम्पीट दिस एनिमी, ये जो स्ट्रांग ओपोनेंट हमारे सामने मौजूद है, हम कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं, हमारे पास क्या टूल्स है, हमारे पास क्या टैक्टिक्स हैं कि जिसको मुझे और आपको इस्तेमाल करना है कि जिसके ज़रिए से वी कैन एबल टू बीट दैट एनिमी। और अहले बैत अलैहिस्सलाम जब अपने चाहने वालों को जानते हैं कि ये दुश्मन के मुकाबला कैसे किया जाएगा, लिहाजा दे आर गाइडिंग अस कि आपको कैसे मुकाबला करना है, जो पहला गोल्डन प्रिंसिपल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रिवायत के अंदर पेश किया वो ये है, कहा यब्न जुंदब, ए अब्दुल्लाह इब्न जुंदब, ए जुंदब के बेटे, हक्कुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान की। अब मैंने कहा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम मैं और आपको जो है वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको बता रहे हैं, मैंने कहा कि ईमान की तमाम मरातिब को अहले बैत अलैहिस्सलाम बताएंगे, पहला स्टेज, पहला स्टेप, जेके एसके की बात करें अहले बैत अलैहिस्सलाम की, ये बियर मिनिमम है, ये तो तुम्हारे पास होना चाहिए, ये तो हर मुसलमान पर वाजिब है, चे बसा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का चाहने वाला हो। बस अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने कहा कि हमारा हर हक अला कुल्ले मुस्लिम ना मोमिन, मोमिन के मरातिब जो है बाद में ऐसा ऐसा बयान किए जाएंगे। पहला बेसिक मिनिमम मर्तबा कि जिसके ऊपर हर मुसलमान को जरूरी है कि वो फाइज हो, वो क्या है? अहले इमाम जाफर से हदीस में फरमाते हैं कि अल्लाह हक्कुन अला, जब हक अला के साथ यूज किया जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और का राइट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस हर मुसलमान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऐसा मुस्लिम की, इसके बाद एक कंडीशन, एक एट्रीब्यूट बताइए, या आरिफ होना, वो मुस्लिम की जो हमें जानता हो, फकत ये जानता हो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम खुदावंद आलम के हकीकी सेलेक्टेड बंदे हैं, ये जानता हो, फकत जानता हो, अभी ईमान की बात नहीं की, अभी उन पर हकीकी मानों में एतिकाद की बात नहीं की, अभी मारिफत रखता हो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को जानता हो, अमलहू फी कुल यौमिन व लैलतिन आला नफ्से, उस पर वाजिब है, उसके ऊपर ये फर्ज है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मुस्लिम हु नो अहले बैत अलैहिस्सलाम। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि वो हर रोज और रोज और शब फी यौमिन व लैलतिन, हर रोज और शब अपने आमाल को अपने ऊपर अर्जा करे, यानी दरहकीकत सादा लफ्ज़ों में ही कहूँ कि हर रोज चंद मिनट अपने स्पेंड करे, अपने आप को जज की सीट पर बिठाए और अपने आप को एक कटहरे में खड़ा करे, बस खुद जज है और खुद ही जो है वो मुल्जिम के तौर पर खड़ा हुआ है अपने आप के सामने, अब सुबह से रात तक का जो है अपना मुहासबा करना शुरू करे कि किया क्या था, करना क्या था और किया क्या है, मैं किस वजह से खल किया गया था, मुझे ये दिन किस लिए अता किया गया था और मैंने इस दिन किया क्या है। आज मैं और आप जब घर पे वापस जाए, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से इंसान स्टार्ट करना शुरू करें और कहे कि मैं आज जब सुबह बेदार हुआ था, खुदावंद आलम ने मुझे एक नई जिंदगी अता की, जब मलाइका ने मेरी रूह को निकाल दिया था, मेरा जिस्म मुर्दा हालत के अंदर इस बिस्तर पे पड़ा था, खुदावंद आलम ने मुझे एक नई जिंदगी दी। लिहाजा रिवायतों के अंदर आया कि जब आप सुबह बेदार हो तो सबसे पहला काम जो आप करें सीधे शुक्र में जाए और खुदावंद आलम का शुक्र अदा करें कि उसने मुझे और आपको एक जिंदगी अता की। कितने ही लोग थे कि जो जब बिस्तर पे सोए थे सुबह, उनको बेदार होने का मौका नहीं मिला, उनको ये तौफीक नसीब नहीं हुई कि दोबारा से जो है वो सांस को लें और दोबारा उनकी रूह उनके जिस्म से मुतवसिल नहीं हुई। बस खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदावंद आलम ने मुझे और आपको ये मौका दिया कि मैं और आप दोबारा से एक नया दिन जो है वो का स्टार्ट करें, नए दिन का आगाज करें। बस अब जब रात हो तो अपने आप को इवेल्युएट करें कि ये पूरा दिन कि जो खुदावंद आलम ने मुझे अता किया था, मुझे खुदावंद आलम ने स्ट्रेंथ अता की, मुझे खुदावंद आलम ने ताकत अता की, खुदावंद आलम ने तौफीक अता फरमाई कि मेरे पास ये सारी, मेरे हाथ पैर आंखें कान नाक सब सलामत थे, खुदा की सब नेमतें थी, मैंने उसको कैसे इस्तेमाल किया खुदा की नेमतों को। जब आप अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, जब आप अपने आप को अकाउंटेबल बनाते हैं, तो मेरा मौला कहता है कि दो में से एक सिचुएशन होगी, या तुमने अपने दिन को खुदा की इताअत में बसर किया होगा, या नाऊज़ बिल्ला तुमसे जो है वो कुछ खता, कुछ कोताहियाँ, कुछ मिस्टेक्स, कुछ सिन, कुछ मकामात पर खुदा के हुक्म की अदूली जो है वो अंजाम पाई होगी, दो में से कोई एक सिचुएशन होगी। मेरा मौला ये फरमाता है, फ़यकून व मुहासिब नफ्स, अपने नफ्स का मुहासिबा करें, फ़इन रआ, अगर वो ये देखता है हसनतन कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद आलम की नेमतें अता की, अंजाम दिए खुदावंद आलम के नेक अमल को, अंजाम दिया खुदावंद आलम की इताअत को, अंजाम दिया हसना को, अंजाम दिया है वो चीज़ की जो खूब थी, वो चीज़ की जो अच्छी थी, वो चीज़ की जो उसके के लिए सजावार थी कि एक बंदे को वो अंजाम दे, उसने वो अंजाम दिए, इस तजादा मिन्हा, अजीबो गरीब ताबीर है ये, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा करना, इंक्रीज़ करना, ठीक है, यानी मसलन सपोज करें अगर खुदावंद आलम ने मुझे तौफीक दी कि मैं आज कोई एक नेक अमल अंजाम दूँ, किसी मोमिन को हेल्प की ज़रूरत थी, मैंने उसकी हेल्प की, ठीक है, अगर मुझे तौफीक नसीब हुई, तो इमाम ये नहीं फरमाते इज़दादा मिन्हा कि तुम कल उससे ज़्यादा अंजाम दो। मेरे मौलाना ने क्या जुमला इस्तेमाल किया, इस्तज़ादा मिन्हा। अरबी के अंदर जब आप वर्ब से पहले सीन और ता का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि तलब ज़्यादा करो, यानी आस्क अल्लाह सुबहाना तआला टू इंक्रीज़, यानी दर हकीकत एक और नुक्ते की तरफ मेरा मौला इशारा कर रहा है कि नेकी के अमल को अंजाम देने के बाद गुरूर का शिकार मत हो जाना, डोंट बिकम एरोगेंट कि मैं भी कुछ हूँ, आई एम समथिंग, मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने ये किया, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने रोज़ा रखा, मैंने फ़लाँ किया, मैंने फ़लाँ किया, कहा कि तू है कौन, तेरी हकीकत है क्या, तेरी अर्जिश क्या है, ये अमल के जो तुझे नसीब हुआ नेक अमल अंजाम देने का, उसकी सोर्स कोई और हस्ती है, वो किसी और हस्ती की तरफ से तुझे नेमत के तौर पर आता हुआ है, बस उसका शुक्र अदा कर और उससे तलब करके, ऐ परवरदिगार जब तूने मुझे तौफीक दी कि मैं एक नेक अमल अंजाम दूँ तो क्यों नहीं तू मुझे तौफीक दे सकता कि मैं दो नेक अमल अंजाम दूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इन नेमतों को इंक्रीज़ कर दूँ, मेरा अकाउंट का बैलेंस है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। ठीक है, बस सोर्स को फरामोश नहीं करना। ये एहसास नहीं आता इंसान का कि मैंने किया है, ये गलती शैतान ने भी की थी जब खुदा वंदे आलम की बारगाह के अंदर इबादत की और रिवायात के बकौल शायद तमाम इबादत गुजार बंदों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बंदा कौन था? हज़रत इब्लीस। ये खुदा का सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बंदा था। प्रॉब्लम कहाँ पर था? नेक तो था, नमाजें तो पढ़ता था, सजदे तो करता था, रोज़े भी रख रहा था, सब कुछ कर रहा था, यहाँ तक कि इस मकाम तक पहुँच गया था कि फरिश्ते उससे आकर तलबे तब दुआ करते थे कि भाई तू हमारी शफात कर दे खुदा की बारगाह के अंदर, खुदा ना खासा हम खुदा के मर्दूद करार ना पा जाए। इस मकाम तक पहुंच चुका था। मेरा मौला अली इब्ने अबी तालिब एक खुद खुद कासिया के अंदर ही फरमाता है कि एक बार दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद सित्तत आला, 6,000 साल खुदा की इबादत की। और मेरा मौला कहता है कि मैं इस बात का ऐलान नहीं करता कि ये 6,000 साल मादी 6,000 साल थे या आसमानी 6,000 थे, फिजिकल वर्ल्ड के 6,000 साल थे या मेटाफिजिकल वर्ल्ड के 6,000 साल थे। इस कदर खुदा की इबादत करने के बाद प्रॉब्लम कहाँ पर था शैतान के साथ? प्रॉब्लम ये नहीं था कि खुदा को सजदा करने को तैयार नहीं था। अब जुमला सुने शैतान का, जब खुदावंद आलम ने कहा कि तमाम मलाइका को हुक्म दिया कि शैतान के सामने सजदा करो, शैतान क्या कहता है परवरदिगार को? परवरदिगार ये सजदा नहीं करूँगा, इसके अलावा अगर तू कहते 2,000 सजदे कर दूँ, 2,000 साल तेरी बात करूँ, मैं रेडी हूँ, बाकी जितने सजदे करेगा मैं रेडी हूँ, लेकिन ये सजदा आदम के सामने नहीं करने वाला मैं, बस अपनी मर्जी की इबादत मैं रेडी हूँ, मैं उस काम को अंजाम दे सकता हूँ, लेकिन खुदा से ही सवाल करूँ कि तू क्या चाहता है उसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ। लिहाजा शैतान के साथ जो अहम तरीन प्रॉब्लम था वो नेकी करने का नहीं था, वो इस बात का एहसास करने का था कि इस नेकी की सोर्स मैं हूँ, आई एम सुपीरियर। जब मैंने नेकी की है तो अब मैं सुपीरियर हो गया, अब इन सबको मुझे सजदा करना चाहिए, मैं क्यों किसी के सामने सजदा करूँ? ये जो एरोगेंसी है, ये जो तकब्बुर खुदावंद आलम के मुकाबले में इंसान के जहन के अंदर आता है, जो इस्तकबार खुदा के मुकाबले में इंसान के जहन के अंदर आता है, ये है जो प्रॉब्लमेटिक है। और बाज़ औक़ात नेकी जो है वो इंसान के लिए बायस बनते हैं कि इंसान अपने आप को सुपीरियर एहसास करना शुरू कर देता है, इंसान अपने आप को बेहतर एहसास करना शुरू कर देता है। लिहाजा अजीब व गरीब जुमले रिवायात के, और कितने दकीक और कितने प्रिसाइज ये जुमले हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से। मिसाल के तौर पर जब रिवायत में कहा जाता है कि जब तुम देखो कि कोई शख्स, जब इंसान देखता है कि कोई शख्स खुदा ना खासा गुनाह कर रहा होता है, इंसान उसको देखता है तो एहसास करता है कि मैं तो उससे अच्छा हूँ, मसलन मैं एक अच्छे मकाम पर हूँ, ये मसलन खुदा का पस, ये बंदा जो है वो नाफरमानी के अंदर लगा हुआ है, गुनाहों के अंदर लगा हुआ है, मैं माशाल्लाह जो है वो शबे जुम्मा, आज बहुत से लोग शायद पता नहीं कहाँ पर किस सेंटर में किस जगह पर बैठे होंगे, क्लब में बैठे होंगे, मैं देखो यहाँ पर दुआ कुमैल सुन रहा हूँ, मैं यहाँ पर नमाज जमात पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो दर्द सुन रहा हूँ, घर से मुझे सुबह जॉब पे भी जाना है, बहुत सारे और काम भी करने, लेकिन इसके बावजूद मैं खुदा का नेक बंदा हूँ, बाकी सारे लोग जो है वो किसी और कामों के अंदर लगे हुए, आई एम सुपीरियर, ये जो एहसास होना शुरू होता है। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब तुम मसलन मिसाल तो एक रिवायत मकसद पे मसलन कहा जाता है कि जब तुम अपने से किसी बुजुर्ग को देखो, अपने से एजेड को किसी देखो, मसलन हमारे बुजुर्गान यहाँ पर बैठे हुए, जब आप इनको देखो तो मैं इनको देखे क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि मैं एक ये कह सकता हूँ कि भाई मसलन की 70 साल 75 साल उम्र है, इन्होंने पता नहीं कितने गुनाह किए होंगे, मैं तो अभी 30 40 50 साल का हूँ, मैंने कितने गुनाह किए होंगे, मेरे पास कितनी वैल्यू है कि मैं कितने गुनाह कर सकता हूँ? अहले बैत कहते नहीं, वाइस वर्सा देखो, इस हस्ती को कितनी नमाजें और इबादतें करने का खुदावंद आलम ने मौका दिया, तुम्हें कहाँ मौका मिला, ये तुम्हें कहाँ मौका मिला, तुम कहाँ पर हो अभी, तुम्हें बहुत ज़िंदगी गुजारनी है, अभी क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्वांटिटी के अंदर भी तुम्हें कहाँ मौका मिला है? खूब वाइस वर्सा आ जाए, मैं किसी बच्चे को देखता हूँ, मैंने कहा कि 15 साल 12 साल 14 साल के एक जवान को देखा, कहा ठीक है अब जब इबादत की बात है, अब मैंने तो ज़्यादा इबादत की, मैं 30 साल 35 साल 40 साल का हूँ, मैं 40 साल का हूँ, ठीक है, 40 साल जो है मैंने इबादतें की है खुदावंद आलम की, ये 15-20 साल का इसने कितनी नमाजें पढ़ूँ, कितने रोज़े रखूँ? कहा यहाँ पे तुम वाइस वर्सा देखो कि तुम ये देखो कि इसको, ये तो अभी बालिग हुआ है, इसने कहाँ गुनाह किए हों खुदावंद आलम, ये पाको पाकीज़ा है, ये मुताहिर है, अभी जो है उसको इतने गुनाह नहीं किए, जब मैं अपने आप को देखूँ तो मैंने अपने गुनाहों के बारे में वाकिफ़ हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं किस कदर पस्त हूँ, मैं किस कदर जलील हूँ। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम मेरी और आपकी निगाह को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं किसी भी मौके पर यह एहसास करना शुरू कर दूँ कि आई एम सुपीरियर देन द अदर पीपल। और ये बदतरीन बुराई है, बदतरीन बुराई मैं कह रहा हूँ, कि इसीलिए मुझे आपसे कहा जा रहा है कि आप दुआ अरफा के अंदर मुताला करें, दुआ अबू हमद सुमारी का मुताला करें, अहले बैत अलैहिस्सलाम की तमाम दुआओं का मुताला करें। एक नुक्ता बार बार ताकीद की जाती है कि तुम खौफ और रजा के बीच में रहो, उम्मीद और खौफ के दरमियान अपनी ज़िंदगी गुजारो, पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म के बिल्कुल दरमियान में तुम्हारी ज़िंदगी होनी चाहिए, कभी ऐसा ना हो कि तुम इतने उम्मीदवार हो जो अपने अमाल के बिना के हो, तुम्हें समझ लो कि बस अब मेरा तो निजात हो गई, ना इतने नाउम्मीद हो जाओ कि बस कहो कि अब मेरे मेरे लिए कोई नहीं है, मैं इतना गुनाहगार हूँ कि मेरी बख्शिश का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, इस खौफ और रजा के बीच में इंसान को रहना चाहिए, ना नाउम्मीद होना चाहिए ना इतना उम्मीदवार होना चाहिए कि फिर अपने आप पे जो है ट्रस्ट करना शुरू कर दे कि मैं जो है वो इतना ज़्यादा नेक बंदा हूँ खुदा बंदा नाम का, अब मेरा कुछ भी जो है वो बिगड़ नहीं सकता। लिहाजा मेरा मौला कहता है जैसे ही कहा कि तुम ये देखो, क्योंकि इंसान जैसे ही देखता है कि मैंने खूबी की है, इवेल्यूएशन का एक खतरा ये होता है कि यहाँ पर इंसान अपने आप को बेहतर समझना शुरू कर देता है। कहता है कि देखो मैं जो है खुदा का कितना नेक बंदा हूँ कि सुबह से उठ के नमाज और इबादत और जिक्र खुदा के अंदर मसरूफ हूँ, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। फौरन से कहा कि इसकी सोच का शुक्र अदा करो, ये मत भूलना कि आया कहाँ से है, ये खुदावंद आलम की तरफ से आया। ये नहीं एहसास करना शुरू कर देना कि तुमने किया ये, ठीक है। कोई भी नेक काम आप अंजाम दें, जहाँ ये एहसास होना शुरू कर दिया कि मैंने ये किया है, वहाँ पर सारा का सारा अमल जो है वो ज़ाया हो गया, इसकी कोई अर्जिश नहीं है खुदावंद आलम की बारगाह के अंदर। उसके मुकाबले में खुदा ना खास्ता वह इन रहा सैयतन, खुदा ना खास्ता नऊज़ु बिल्लाह, अगर आपसे और मुझसे कोई गुनाह सरजद हो गया, कोई नाफरमानी सरजद हो गई, उस अजीम परवरदिगार की बारगाह में हमने कोई मासियत कर दी, मेरा मौला कहता है कि इस्तग़फ़र मिना, दोबारा से तलब इस्तग़फ़ार की बात की। मैंने कहा कि अलिफ सीन और ते ता जिस अरबी की वर्ड में आता है, खुदा से मग़फ़रत तलब करना, खुदा से कंपनसेशन तलब करना, यानी इस बात का एतराफ़ करना दोनों सूरतों के अंदर, चाहे हसना को आप इंसान देखे चाहे सैया को देखे, यह एहसास करे कि अगर कोई चीज़ मुझे हासिल हुई है तो उसका सोर्स परवरदिगार है, और अगर मुझसे कोई कोताही हुई है इसको कंपनसेट करने वाली ज़ात कौन है, परवरदिगार ग्रामी है, इसके अलावा कोई और ज़ात नहीं है जिससे मैं तवस्सुल कर सकता हूँ। बस इंसान दोनों हालतों के अंदर खुदावंद आलम से अपने आप को मुतवस्सिल करने की कोशिश करे, खुदावंद आलम से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करे, और ये एहसास करे कि वो दूसरा नुकता था कि जो अगर सैयतन इरादा है कि थोड़ा सा सैया के बारे में, गुनाह के बारे में, गुनाह की हकीकत के बारे में, गुनाह के एसेंस के बारे में, गुनाह की रियलिटी के बारे में थोड़ा सा आपसे गुफ्तगू करूँ, लेकिन वक्त वैसे ही काफ़ी गुजर चुका है। लेकिन एक बात जब सैया के बारे में इंसान बात करे कि एक अजीब गरीब ताबीर है दुआओं के अंदर, ख़ासतौर पर दुआ अबू हमजा समाली के अंदर और दुआ अरफा की, जो इंशाल्लाह आप सबको मौका मिला होगा कि दुआ अरफा की तिलावत करें मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान से, या आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह या तौफीक आप सबको नसीब होती है कि शब जुमा आकर दुआ कुमैल की मेरे मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कलमात की तिलावत करते हैं। जब इन दुआओं को पढ़े, डेफिनेटली अरबी में पढ़ना, मौला की कलमात की तिलावत करना उसी तरह से कि जिस तरह से आई अलैहि सलाम ने बयान किया, इसकी अपनी अर्जिश है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसकी अपनी एनलाइटमेंट है कि जो आपको अपने कल्ब के अंदर महसूस होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो सोर्सेज है ये मारिफत के ख़जाने हैं, ये मामूली नेमतें नहीं है कि जो मुझे और आपको मिल चुकी है, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की रातों की गुफ्तगू है अपने परवरदिगार के साथ कि जो मुझ तक आप तक पहुँची, ये मामूली कलमात नहीं है, ये उन हस्तियों की ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा की ताबीर है, जिनकी सोर्स जो है वहाँ से आई हुई है, ठीक है। बस ये कलमात मामूली कलमात नहीं है, ये अल्फाज जो है मामूली अल्फाज नहीं है। लिहाजा इन दुआओं के अंदर कोशिश करें कि जहाँ आप तिलावत करें मतलब शब जुमा, बाज़ औक़ात 5 मिनट 10 मिनट इनके जुमलों पर गौर करना शुरू करें, एक सफ़ा उठाएं और देखें कि मेरे आइमा अलैहिस्सलाम ने किस तरह से खुदा से कलाम किया है, खुदा से गुफ्तगू करने का तरीका किस तरह से सिखाया है मुझे आपको। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि अगर आइमा अलैहिस्सलाम की दुआएं ना होती तो हमें आज तक ये समझ में ना आता कि हम अपने परवरदिगार से कैसे खिताब करें, कैसे मुकालमा करें, कैसे कन्वर्जेशन करें। ये दुआएं ये नेमत हैं कि जो हमें मुझे और आपको नसीब हुई कि जिसके ज़रिए से मैं और आप खुदा से हम कलाम हो सकते हैं। एक नुक्ता कि जो इन दुआओं के अंदर बहुत शिद्दत के साथ ख़ास तौर पर गुनाहों के बारे में आया है वो अजीब गरीब है। तो अबू हमजा समाली मेरा मौला फरमाता है इस दुआ कुमैल के अंदर बे अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि ए परवरदिगार, जब मैंने गुनाह किया यानी जब मैं इस स्टेट में था कि जब मैं तेरी नाफरमानी कर रहा था, जब मैं तेरी मुखालफत कर रहा था, जब आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट योर ऑर्डर, जब मैं तेरे हुक्म के अगेंस्ट में काम कर रहा था, उस मौके पर भी उस स्टेट के अंदर भी मैं इसलिए काम अंजाम नहीं दे रहा था कि आई वॉन्ट टू स्टैंड अगेंस्ट यू, नहीं ऐसा नहीं था, बल्कि मसलन दुआए दुआए कुमैल में मेरा मौला फरमाता है कि सब मेरे दुनिया ने जो मुझे धोखा दे दिया, दुनिया के धोखे में आ गया, ये नफ्स ने मुझे धोखा दे दिया, मैं थोड़ी देर के लिए स्लिप हो चुका था, यानी ऐसा नहीं था कि मैं तेरे मुकाबले में स्टैंड करना चाहता, मैं अगेंस्ट में खड़ा हूँ, नहीं असल मेरी औकात है क्या, मेरी वैल्यू है क्या कि मैं तेरे अगेंस्ट में खड़ा रहूँ, या जो है वो हमें समझ में ना, मौला फरमाते हैं कि मैं इसलिए नहीं खड़ा होता था कि अहवन नाजिन, तू मुझे देख नहीं रहा कि मैं क्या करूँ, मुझे मालूम है तू सब कुछ जानता है, लेकिन मुझे जो जुर्रत पैदा हो गई, ये मुझे स्ट्रेंथ आ गई कि तेरे हुक्म के अगेंस्ट में खड़ा हो रहा हूँ, शायद इसकी वजह ये थी कि तू अरहमुर राहिमीन है, तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, तू मुझे मुझे मालूम है कि मतलब होता है ना कि जब एक बच्चा जब घर के अंदर होता है, अगर माँ बाप दोनों मौजूद हो, बाप के मुकाबले बच्चे को एक डर होता है, बच्चों को खौफ होता है, कहते हैं कि अगर मैंने बाप के मुकाबले की तो कुछ भी हो सकता है, हालांकि शायद कहना में शायद कुछ भी बहुत कम होता है, लेकिन पाकिस्तान होता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। माँ के सामने बच्चा मालूम है थोड़ा सा जो है ना वो नखरे कर सकता है, बच्चा जो है वो थोड़ा सा अपनी चीज़ें जो है वो कारस्तानी अंजाम दे सकता है, क्योंकि हमारे माँ जो है थोड़ा आसानी से जो है वो राज़ी हो जाएगी, माँ को जो है वो थोड़ा सा मैं एक बात करूँगा, थोड़ा सा एक आंसू बहेगा तो माँ बेचारी जो है ना वो आराम से मुझ पर राज़ी हो जाएगी। खुदा जो है वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, ठीक है, अरहमुर राहिमीन है, तो एक कहते हैं सरीउर रज़ा, सबसे जल्द राज़ी हो जाने वाला, बंदों से अगर आप बंदों की मुखालफत करें, बंदों को मनाते हुए जो ज़िंदगी गुजर जाती है कि भाई अच्छा भाई गलती होगी मुझसे माफ़ कर दो यार, ज़िंदगी गुजारें, दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, ज़िंदगी गुजर जाएगी, ऐसी मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं एक एक हफ्ते तक जो है वो बात नहीं हो रही होती, वो उधर मुँह करके सो रहे हैं, वो उधर मुँह करके सो रहे हैं, ठीक है, ज़िंदगी है ये चंद दिनों की, बिस्मिल्लाह आपस में जो है वो खुलासा कर लें, ख़त्म हो गई बात, चले जाए। खुदावंद आलम कहता है कि मैं सरी और रज़ा हूँ, सबसे जल्द राज़ी हो जाने वाला है, जब कोई राज़ी ना हो आप खुदा की बारगाह में तन्हाई में दो गुफ्तगू करें, खुदावंद आलम कहते हैं मैं राज़ी हो जाता हूँ। ये जो खुदा का राज़ी हो जाना है, खुदा का अरहमुर राहिमीन होना है, उसकी वजह से मुझ में जुर्रत पैदा होगी, यानी मसलन खुदा से कहेंगे परवरदिगार मैं ऐसा नहीं था कि मैं जो है तेरे अगेंस्ट में खड़ा होना चाहता, ये जो गुनाह हुए हैं मुझसे ये भी तेरी मुखालफत नहीं थी, बल्कि ये तेरी खसूसियात या तेरी खूबियाँ थी कि जिसने मुझे ऐसा कर दिया कि मैं मुझ में जुर्रत पैदा होगी तेरी मुखालफत कर लूँ, वरना मुझ में ये हौसला नहीं था कि तेरे अगेंस्ट में खड़ा रहूँ, मेरे अंदर ये तवानाई या ताकत नहीं कि मैं तेरे अगेंस्ट में खड़ा रहूँ। ये एतराफ़ है कि जो खुदा की बारगाह में मुझे आप करना है, बिलखसूस इन रातों के अंदर के जो शब जुमा कहलाते हैं, चाहिए मैं और आप इन दुआओं के ज़रिए से जो रहबत अलैहिस्सलाम ने मुझे आपको तालीम दी है कि एतराफ़ करें खुदा की बारगाह के अंदर कि ऐ परवरदिगार तूने हमें ये नेमत उज़्मा अहलेबैत अलैहिस्सलाम की सूरत में अता की, इनकी दुआएँ इनकी कलमात हम तक पहुँचें, हमें तौफीक अता फरमा कि इन दुआओं की तिलावत कर सकें, उनको समझ सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढाल सकें। इंशाल्लाह एक बार दुरूद भेजें मोहम्मद वाले के लिए। माजरत के साथ आपका वक्त ज़्यादा हो गया, मैं मसाइब के दो या तीन जुमले आपके सामने करूँ ताकि इंशाल्लाह इस महफिल को जो है वो बरकत अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के साथ नसीब हो जाए। बास रिवायात के मुताबिक ईदुल अज़हा के मौके पर कि जब हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम खुदावंद आलम की तरफ से हुक्म दिया जाता है कि अपने फ़र्जंद को खुदा की बारगाह में क़ुरबान करें, बाप बेटे की बारगाह में आता है, अपने ख्वाब को बयान करते हैं हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम। जवाब बेटे का क्या था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, मेरे हज़रत इब्राहिम इस्माईल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ए बाबा आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। खुदा ने इस कुर्बानी को बेज़िब अदीम के मुकाबले में जो है वो फदेनाओ बेज़िबिन अदीम, एक और कुर्बानी थी कि जिसकी सराहत के साथ कुरान करीम में जिक्र नहीं किया गया, वो कुर्बानी कौन थी कि इस कुर्बानी को की जिम्मेदारी को इस इम्तहान को हज़रत इब्राहिम से हटा दिया गया, लेकिन एक उससे अजीम कुर्बानी को जो है हज़रत इब्राहिम की औलाद के अंदर रखा गया जिसको जो है वो कुर्बान करना था। यहाँ मंजिल ये थी कि इस्माईल अलैहिस्सलाम भी कहते थे कि मैं साबिर बनूंगा बाबा, रिवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आँखों पर पट्टी बांधी थी, रिवायात के मुताबिक जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पलट के वापस जाते हैं शायद खंजर का एक हल्का सा निशान जो है वो गर्दन पर मौजूद था, माँ ने देखा, माँ गज खा के बेहोश हो जाती है, माँ से देखा नहीं गया कि ये सोचकर कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, ला यौम कयौम कया अबाब दिल्ला, मुहर्रम बहुत नज़दीक, अपने आप को आमादा करें करबला के लिए, ये सानिया वाकई सानिया नहीं है, मामूली सानिया नहीं है, मामूली हादसा नहीं है, इन आंखों को मुझे और आपको आमादा करना है हुसैन पर गिरिया करने के लिए, इस कल्ब को आमादा करना है हुसैन पर गिरिया करने, इन हाथों को आमादा करना है हुसैन पर मातम करने के लिए, आइए आज से तैयारी करें करबला के लिए, अपने आप को आमादा करें, वरना नसीब नहीं होने वाला
कि इस हुसैन पर मैं और आप क्रिया कर सके। आइए अपने आंखों को आज से तैयार करना शुरू करें, अपने दिलों को आज से तैयार करना शुरू करें हुसैन के लिए। मकाम वो था कि जो सब्र का मकाम नहीं था, शुक्र का मकाम था। हुसैन एक एक कुर्बानी देते जाते हैं, हर कुर्बानी के बाद खुदा का शुक्र करते जाते हैं, यहाँ तक कि आखिरी मकाम पर मेरा मौला सजदे की हालत के अंदर खुदा का जिक्र करता हुआ पाया जाता है। रिजन बेकदा ही व तस्लील में तस्लीम अल्लाह माबूद असिवा। जब बेटे के जनाजे पर हुसैन आते हैं, एक बार जब अली अकबर इजाजत के लिए तशरीफ लाते हैं, कहा बाबा जंग की इजाजत दे, रिवायत का जुमला ये है, इस्ताज़फ अज़ना फस्ताज़ना, जहां बाबा से इजाजत तलब की हुसैन ने कहा बेटा खुदा की राह में कुर्बान किया, सवाल नहीं किया, इंतजार नहीं किया मेरे मौला ने, खुदा की राह में जब कुर्बान करना था सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब आओ आओ बीबी हाजरा को कहे, बीबी हाजरा आओ करबला की माओ को देखो, जब और मोहम्मद का जनाजा खयाम में वापस आता है, रिवायत का जुमला ये, बीबी ने शिकवा नहीं किया, एक बार अपने आप को सजने में गिरा दिया, परवरदिगार तेरा शुक्र। मैं कहूंगा बीबी ये तो होनो मोहम्मद का जनाजा था, अरे जब हुसैन के लाशे को मैदान करबला में बेगोरों का कफन देखा, एक बार इस लाशे को अपने हाथों में बुलंद किया, परवरदिगार तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार अहले बैत से इस कुर्बानी को कबूल फरमा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीम अल-अम्रे ला माबूद सिवा की, या अरहमुर रहीमीन, परवरदिगार हमारी इस कलील इबादत को अपने बारगाह में कबूल फरमा, हमें अपनी इताअत अफरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा, हमें हर रोज़ और शब अपना मुहासबा करने और उस मुहासबे के मुताबिक अपनी इसलाह करने की तौफीक नसीब फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना अज्जला तआला फ़रजहु शरीफ की ज़ूर में ताजील फरमा। इस विलायत के एतबार से हम पर जो ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं उन सबको अदा करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमा। हमें हमारी औलाद को हमारी आइंदा नस्लों को मुहिबान मोहम्मद व आले मोहम्मद में से करार दें। हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के रास्ते पर ज़िंदगी अता फरमा, उन्हीं के रास्ते पर मौत की शहादत नसीब फरमा। एक बार दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।